Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जो पैसे में पसीने की महक ना हो, वो पैसा आपको सुख के साधन तो दे सकता है, पर शांति नहीं दे सकता। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधीश शर्मा जी, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू वेरी मच।
डॉक्टर साहब, जो रिश्ते कहीं ना कहीं टाइम की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, जैसे कि ऑफिस के रिश्ते, वहाँ पर हम ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटा काम कर रहे होते हैं रोज। आई थिंक घर में जितना समय हम बिताते हैं, उससे ज़्यादा समय हम ऑफिस में बिताते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटी छोटी टकराव के कारण हमें वो जगह पसंद नहीं आती। कुछ ऐसे लोगों के साथ रिश्तों की कड़वाहट हो जाती है, जिसकी वजह से वो माहौल में प्योरिटी की कमी होने लगती है। ऐसे में अपने आप को स्टेबल रखने के लिए सबसे पहला कौन सा ऐसा चेंज लाने की ज़रूरत है हमारे अंदर में, जिससे हम उस माहौल को बदलने के लिए पहल कर सकें?
आपने बहुत एक सही बात कही कि जब हम काम पे जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए हमें रिश्तों की ज़रूरत होती है।
True.
अच्छा, पहली बात तो कि वो जो 8 घंटे का ऑफिस टाइमिंग था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। वो 8 घंटे जो हैं, वो खिंच के 10 से 12 घंटे हो गए
आराम से।
और अगर आप टाइम स्पेंड इन अ बिग सिटी, तो ट्रैफिक में, और उसके बाद भी कई बार, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है, तो ईमेल्स और मैसेजेस, उनको भी जवाब देने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं लोग काम के बीच में ज़िंदगी जी रहे हैं। काम और जिंदगी के बीच के बैलेंस में नहीं जी रहे।
सो ट्रू।
सो काम एक सेंट्रल पर्पस बन गया, उसके आसपास जो थोड़ा बहुत समय मिला, एनर्जी रही, तो वो फिर जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। सो वर्क हैज बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, नंबर वन।
ट्रू।
नंबर टू, जो काम करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए या नॉलेज चाहिए, वो तो सिखाई जाती है।
बिल्कुल।
लेकिन उसको करते वक्त जो हमें लोगों के साथ डील करना है और कैसे डील करना है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आमतौर पे नहीं सिखाया जाता।
ट्रू।
तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एट वर्क की बात है, जहाँ पे कि लोग दूसरों के साथ कैसे चल सकें, अगर कोई कंपटीशन है तो उसको कैसे हल्का कर सकें, अगर कोई जेलसीज हैं, उनको जानने के बावजूद कैसे दूसरे के साथ बिना गुस्सा किए चल सके, अगर कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बावजूद अपनी स्पिरिट्स को कैसे ऊंची रख सके, अगर कोई आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे, तो उस एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरा कर सके बिना ये जताए कि आप मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
करेक्ट।
अगर कोई सुपीरियर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो कैसे उसे नज़रअंदाज कर सके, अपनी स्पिरिट्स को ना लो करें।
एग्जैक्टली।
कोई जूनियर अगर आपकी बात नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ चलना है, उससे काम करवाना है, तो कैसे करवा सके। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि रोज़ एक ऑफिस में होती हैं।
ट्रू।
और हम कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि ये तो अपने आप ही आ जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इंटरपर्सनल स्किल्स, स्पेशली जब लोग अलग अलग माहौल से आते हैं, कई बार अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग रूरल अर्बन सोसाइटीज से आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन काम को लेके अलग अलग होती हैं, फिर भी उनके साथ चलना, ये जो है ये स्किल है जिसे कुछ लोग स्वतः ही पिकअप कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ये नहीं सिखाई गई है, तब भी उसको कहीं ना कहीं हम पा सकते हैं।
बिल्कुल।
वन ऑफ द थिंग्स विच पीपल रियलाइज इमीडिएटली जब वो काम करना शुरू करते हैं, कि जो उन्होंने सीखा, पहली बात तो वो थ्योरेटिकल था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लगाने के लिए कुछ समय लगता है। वो पीरियड ऑफ प्रोबेशन कह लीजिए चाहे, कंपनीज प्रोबेशन पे किसी को रखते हैं ये देखने के लिए कि वो काम कैसा कर सकता है, उसकी डिग्री चाहे जितनी अच्छी हो
जी,
लेकिन वो डिलीवर कैसा करता और उस डिलीवरी में ये जो बाकी सारी स्किल्स हैं जिन्हें हम ह्यूमन स्किल्स कहते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। हर कंपनी ये चाहती है, इसलिए तीन चार चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है
जी।
पहला, आपका जो भी एम्बिशन है वो एक दिन में आप नहीं पा पाएंगे, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। दूसरा, आपके एम्बिशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरे के लिए नहीं। हम कई बार सोचते हैं कि मैं इतना ऊंचा जाना चाहता हूं, दूसरे मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई है कि वो भी ऊपर जाना चाहते हैं, आप उनकी कितनी मदद कर रहे हैं।
True.
तो अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी तभी दूसरों की आपको पूरी सपोर्ट मिल पाएगी।
करेक्ट।
तीसरा ये कि अगर आप बहुत देर तक
जी
लाइफ फैमिली योरसेल्फ एंड काम का बैलेंस नहीं रखेंगे तो सिर्फ काम आपको बहुत देर तक आगे नहीं सपोर्ट कर पाएगा, प्लस आप काम करते हुए भी शायद खुश नहीं रह पाएंगे। सो ये भी एक शुरुआत से ही आई थिंक दीज आर स्किल्स जो हमको ना जब जैसे लोग काम करना शुरू करते हैं उनको सिखाने की ज़रूरत है। वेयर एज अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर वो सिखाना शुरू कर देंगे तो लोग काम करना उनको लगता है बंद कर देंगे। बट द रियलिटी इज़ कि अगर कोई व्यक्ति जो आपका एम्प्लॉय है वो खुश है, उसकी एनर्जीज बेटर है, तो काम पे भी उसकी एनर्जी बेटर होगी।
बहुत फर्क पड़ जाता है। ये बात आपने एकदम सही कही डॉक्टर साहब। कई बार ऐसा होता है कि हम माहौल में रोज जाते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने काम को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो रिलेशनशिप्स आसपास जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ क्रिएट करना भी उन्हें टाइम वेस्ट लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, मेरा काम है कि मैं काम करूं 8 से 9 घंटे और सीधा घर पे जाऊं। लेकिन जो एक इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम होता है दूसरों के साथ में, आप कैसे डील कर रहे हैं, कैसे आप उनसे बात कर रहे हैं, कैसे आप उनसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, उन चीज़ों पे वो समय देना फिजूल समझते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म किसी चीज़ को करना है तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आपकी क्या राय है?
देखिए, आपके काम का आंकलन करने वाला भी ह्यूमन बीइंग होगा, मशीन नहीं। तो अगर वो व्यक्ति जिससे कि चाहे वो आपका बॉस है चाहे अल्टीमेटली पैनल है, कौन डिसाइड करेगा कि आपने जो मेल लिखी अच्छी थी कि नहीं, आप इतना काम जो किया उसकी क्वालिटी क्या थी, ये सब जो है वो दूसरा कोई व्यक्ति देखता है और डिसाइड करता है। वहां पे मैं चापलूसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वहां पर दूसरे व्यक्ति को महसूस होता है कि आप काम भी कर रहे हैं, दूसरों से सीखने की भी इच्छा है और दूसरों को सिखाने की भी इच्छा है, तो आप एक अच्छा लीडर बनेंगे। और लॉन्ग टर्म के ऊपर ये जो चीज है ये ज्यादा मायने रखती है। मान लीजिए आपने आज जितना काम किया उतना ही आपने उसके बारे में अपने आप को सेटिस्फाई किया, किसी और को नहीं किया। कल आपने आके काम किया वही रहा, तो आप उसी काम पे रहेंगे। अब आपने जब नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो आपको किसी ना किसी से तो सीखना पड़ेगा ना।
True.
वो स्वतः ही नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं एक इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी, दूसरे व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उसकी स्किल्स के लिए, और फिर उस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा सिखाने के लिए। तो अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो कई बार जो आपने बात कही कि मैंने तो अपना काम किया उसके बाद मुझे से किसी से कुछ नहीं लेना देना, वो काम उस लेवल तक अच्छा करते हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वो ज़्यादा नहीं चल पाते।
ये आपने एकदम सही कहा। जैसे बात करें हम प्रमोशंस की, ये मैंने नोटिस किया है कि जो प्रमोशन जिनका होता है मेरे आसपास के एक्सपीरियंसेस, जैसे मेरी सिस्टर है या मेरे भाई है, जो लोग हैं, मैंने नोटिस किया है कि सॉरी
जी
डॉक्टर साहब, ये बात आपने एकदम सही कही। जैसे मैंने आसपास के अपने रिश्तेदारों में एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको कुछ ऐसा करके दिखाना होता है जो आपकी लेवल पे, जो आप काम कर रहे हैं आप उससे ऊपर हैं, आपकी कैपेसिटी उससे कहीं ज़्यादा है। उसके लिए उन्हें अपने से ऊपर वाले जो पोस्ट वाले लोग होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं उनसे सीखने की ज़रूरत होती है, उनसे अच्छी बातों को अपनाने की ज़रूरत होती है, तभी ही लोग आपको देखेंगे कि हाँ इनके अंदर में वो क्वालिटीज़ हैं कि ये प्रमोट किए जा सकते हैं। ऐसे में एक रिलेशनशिप उनके साथ क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, तभी वो अपनी जो क्वालिटीज़ है वो अपने आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इट्स ऑल्सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
श्योर, वैसे भी अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, वो एक पिरामिड जैसी होती है।
करेक्ट।
जितना जितना आप ऊपर जाते हैं द नंबर ऑफ पीपल कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। उसका रीज़न यह है कि वो लोग ज़्यादा क्वालिफाइड या तो होते हैं, उन्हें पे भी ज़्यादा मिलती है, उनके पर्क्स भी ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी कुछ स्किल्स हैं कि वो अब ज़्यादा लोगों से काम करवा पाते हैं।
True.
और उनकी आउटपुट जो है वो सिर्फ उन पर नहीं लेकिन और लोगों से काम करवा के उसे उभारने में होती है। तो अगर इंटरपर्सनल स्किल्स ही नहीं है तो फिर आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे।
True.
तो आपको जैसे जैसे ऊपर जाना है तो अपने साथ वालों से आपको ऊपर पहले उठना पड़ेगा।
Exactly.
और वो सबको दिखना चाहिए कि आप उठे हैं, और वो जो स्किल है वो स्किल सिर्फ दूसरों को रिस्पेक्ट देने से, दूसरों से सीखने की चाह होने से, एक बहुत बड़ा विजन होने से, ये जो छोटी मोटी जिनको ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं उनसे हटके होने से, और ख़ास तौर पे अपनी एनर्जीज को इन चीज़ों में वेस्ट ना करने से होती है।
करेक्ट।
कई बार ये बात उठती है कि साहब आप अगर किसी अपने बॉस को खुश रखेंगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी। आई डिसएग्री, क्योंकि कुछ प्रमोशंस आपको किसी हद तक
जी
शायद इस रूप में मिल जाए लेकिन वो हमेशा नहीं, और वो प्रमोशन मिलने के बाद अगर आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाते, आप डिलीवर नहीं कर पाते, तो आप उस पोजीशन तक ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते।
Exactly.
तो अपनी एनर्जीज को हम उन चीज़ों में ना वेस्ट करके जो मेरा बेसिक काम है, जो मुझे डिलीवर करना है, उसके लिए अगर हम संभाल के रखें और उसमें सकारात्मक रूप से कैसे लोगों को रिश्तों के साथ में चलना है उस पर फोकस रखें तो वो रिश्ते बहुत दूर तक जाते हैं।
ट्रू।
आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि लोग जब एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी देते हैं और जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे कोई व्यक्ति जिन्होंने उनके साथ पहले काम किया है उन्हें मालूम है कि ये व्यक्ति सिर्फ काम ही अच्छा नहीं डिलीवर करता लेकिन बाकी लोगों के साथ भी इसकी डिलीवरी अच्छी है, तो वो उनसे आकर्षित होकर उनको अपने पास रखने की कोशिश करते हैं।
करेक्ट।
और वो व्यक्ति जो कि दूसरे के साथ नहीं चल पाता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि उनका माहौल खराब हो, आपस में टेंशन्स हो, झगड़े हो, क्योंकि वो काम के ऊपर भी सफर करते हैं।
बिल्कुल।
वहाँ पर शायद सिर्फ काम ही नहीं लेकिन काम करने के बाद मैं कितना खुश हूँ अपने से, मुझसे कितने लोग खुश हैं ऑफिस में और घर में, ये डिपेंड करता है कि मैं वो खुशी को काम की तरफ ले जा पाऊंगा या नहीं।
डॉक्टर साहब, यहाँ पर जब जिस सिचुएशन में जैसे आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड बंदा जब ये करता है, रिलेशनशिप्स के साथ डील करता है ऑफिस में, तो उनका एक अलग लेवल होता है क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को क्रॉस करके आज उस लेवल तक पहुँचे हैं जहाँ पर लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी इंसान पेज से सीख करके नहीं आता, वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है। ऑफिसेज में भी शायद जब उन्होंने धीरे धीरे प्रमोशंस लिए होंगे तो उन्होंने आसपास के लोगों को अपने साथ लेकर चलना सीखा होगा। अगर हम सीखना छोड़ देते हैं ज़िंदगी में तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो किसी भी एज ग्रुप में जितना मुझे लगता है कि चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो, अगर हमारे पास सीखने की चाहना है कि हाँ मैं बदलाव के लिए रेडी हूँ, तो लाइफ थोड़ी सी और आसान हो जाती है और जो रिश्ते हैं उनमें भी मिठास आ जाती है। आपका क्या कहना है?
देखिए, हम जिंदगी बने आसान में
जी
लोगों को आसान तरीकों से जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस से सीखना है उसको कट शॉर्ट कैसे कर सके,
करेक्ट,
ताकि उन प्रिंसिपल्स को जल्दी अपना के हम कैसे अपने और आसपास के लोगों की जिंदगी को आसान बना सके, वही एक लक्ष्य है
बिल्कुल
प्रोग्राम
बिल्कुल,
का
बिल्कुल।
तो वहां पे आई वुड से कि यस, कोई पेट से सीख के नहीं आता, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि पेट में जब आप हैं तो माँ जो सुन रही है उसका भी एक्सपीरियंस होता है। तो उसी प्रकार से अगर आप शुरू से ही इन चीजों को अपने परिवार में देखते हैं,
करेक्ट,
एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स। बचपन में ही उन्होंने अपने माँ बाप को लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते देखा, या उन्होंने समझदारी से बिना अपना संतुलन खोए उनको चीजों के साथ डील करते देखा, क्या उन्होंने जब भी कोई छोटी सी भी बात हो उसमें गुस्सा करते देखा या शांति से दूसरों के साथ डील करते देखा, अगर कोई क्राइसिस आया तो उसमें वो टूट गए या उसी क्राइसिस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं इसको करते देखा
जी।
तो वो सारी चीजें जो हैं वो फैमिली में इंसान सीखता।
बिल्कुल।
लेकिन अगर एक इच्छा हो
जी,
तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के सिवा इन मुद्दों पे जो कि उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, कहा जाता है कि इंटेलिजेंस गेट्स योर जॉब,
करेक्ट,
इमोशंस हेल्प यू कीप दैट जॉब, स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू एंजॉय दैट जॉब। तो अगर सेकंड यानी इमोशंस प्रॉपर तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ रिश्तों का और उसको एक हायर पर्पस में देखने का,
करेक्ट,
अगर किसी ने मुझसे कुछ किसी कारण से ठीक ठाक बात नहीं की तो हो सकता है उसका घर में बच्चा बहुत बीमार है,
सही बात है,
हो सकता है आज रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है उसके साथ कोई और क्राइसिस चल रहा,
करेक्ट।
तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इमीडिएटली रिएक्ट ना करूं और रुक के उस व्यक्ति को थोड़ी सी सांत्वना दे के या खुल के उससे बात पूछ के आगे करूं, तो ज़्यादातर हम पाएंगे कि सिर्फ यही नहीं है कि वो रिश्ता बेटर हो जाता है या उस समय में हम उस चीज़ को ज़्यादा बेटर डील कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबे समय के लिए एक रिश्ता जो है मजबूत हो जाता है।
ट्रू।
सो वहाँ पर एक हायर पर्पज़ ऑफ लाइफ, हम काम किस लिए करते हैं ये ज़रूरी हो जाता है। क्या सिर्फ वहाँ जाके एक खास डेजिग्नेशन को लेने के लिए, उतना पैसा कमाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, या उस काम से मेरे और मेरे समाज की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, या उस काम को करने से लोगों को खुशी मिल रही है और मुझे भी खुशी मिल रही है, उस काम को करने से क्या मुझे मेरी जो सेल्फ एस्टीम है
जी,
मेरा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ रहा है, क्या मैं रोज़ कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ जिससे ज़िंदगी को जीने में मुझे मदद मिलती है, ये काम के पर्पस है।
करेक्ट।
सिर्फ एक पे चेक बाय द एंड ऑफ द मंथ एक पर्पस नहीं है, या हर 2 साल में मेरी प्रमोशन, या हर 3 साल में मुझे एक फॉरेन ट्रिप, या 10 साल के बाद एक मकान और 2 साल के बाद गाड़ी वगैरह वगैरह, जो चीज़ें आमतौर पर काम से लोग जोड़ते हैं वो उसके फ्रूट्स हैं।
करेक्ट।
लेकिन अगर तना जो है उसका सशक्त नहीं होगा तो वो फ्रूट्स नहीं आएंगे।
ट्रू।
और इसीलिए ये देखा गया है कि जब उन चीज़ों से इंसान काम करना शुरू करता है तो कुछ स्टेज के बाद जिसको हम बर्नआउट कहते हैं वो होना शुरू हो जाता है। बर्नआउट का मतलब ही ये है कि आप अपने काम से जूझते जूझते इतने जल गए हैं कि बर्नआउट हो गया। तो उसको बचाने के लिए आई थिंक हमेशा एक हायर पर्पस फॉर वर्क अगर हम करके चलते हैं, कई बार ये ज़रूर होता है कि जिस तरह के कल्चर से हम आए हैं
जी,
और जो वर्क कल्चर है उस जगह का, वर्सेस अगर हम एक नई जगह पे गए हैं चाहे देश हो चाहे विदेश हो, वहाँ का वर्क कल्चर अलग हो जाता है तो सीखने में थोड़ा समय लगता है।
बिल्कुल।
बट बाय एंड लार्ज जो बेसिक वर्क कल्चर है या एथिक्स है वो हर जगह के सेम रहते हैं।
एग्जैक्टली।
और इज्जत एक ऐसी चीज़ है, सीखने की चाह एक ऐसी चीज़ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं उसके प्रति निष्ठा एक ऐसी चीज़ है कि जो हर कल्चर में, देश में, विदेश में काम आती है।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमने कई सारी बातों पर रोशनी डाली। हमने जानने की कोशिश की कि ऑफिस के वातावरण में किस तरह से पीस लाया जाए, किस तरह से हम अपने रिश्तों में मिठास ला सकते हैं ऑफिस एरिया में। हमने जाना कि अगर हम खुद पहल करें, खुद को डाउन टू अर्थ रखकर लोगों के साथ डील करें, तो कहीं ना कहीं हम उन प्रॉब्लम्स से जूझ जिससे आज रहे हैं उससे बाहर भी निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
प्लेजर ऑलवेज, थैंक यू।
ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि ऑफिस जो है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जितना हम रिलेशनशिप्स को अर्थात फैमिली को देते हैं। वो हमारी सेकेंड फैमिली है। वहाँ पर भी भले ही हम कितना अच्छा भी परफॉर्म करें, लेकिन हमारी जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, जिस तरह से हम लोगों के साथ डील करते हैं, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका परफॉर्मेंस। आप किस तरह से, किस ऑरा के साथ में एंटर करते हैं ऑफिस में, वो भी लोग देखते हैं। आप किस तरह से लोगों के साथ डील करते हैं, वो भी लोग समझते हैं। अगर हम इन चीज़ों पर भी ध्यान रखेंगे तो हमारा घर, जो कि दूसरा घर है ऑफिस, वो भी एक सुखद एरिया बन जाएगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।